नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड अस्वीकार्य है। चीन के तियानजिंग में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में श्री मोदी ने आतंकवाद को मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की जानी चाहिए।
भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि SCO के लिए भारत का दृष्टिकोण और नीति 3 महत्वपूर्ण स्तंभों, सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित है। सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट और एकजुट संदेश दिया गया। सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आर्थिक, वित्तीय तथा ऊर्जा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सहयोग पर आज विचार विमर्श किया। उन्होंने इन क्षेत्रों में सतत वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए हाल में किए गए प्रयासों के प्रति समर्थन दोहराया।
यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है।
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन की सफल यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अखिल भारतीय वाक और श्रवण संस्थान में संचार विकार की समस्या के समाधान के लिए नवीन तकनीक और व्यवस्था विकसित करने का आह्वान किया है। मैसूर में संस्थान के हीरक जयंती समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि संस्थान को अन्य शोध संस्थानों, स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए और दिव्यांगता के मुद्दे के समाधान के लिए अपने पूर्व विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जम्मू में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। श्री शाह बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों का आकलन करने के लिए रविवार रात जम्मू पहुंचे थे। 14 अगस्त से राज्य के कई जिलों में बादल फटने, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 130 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 33 लोग लापता हैं। इस बीच खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा आज लगातार 7वें दिन भी स्थगित है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में एक बैठक में पंजाब सहित विभिन्न राज्यों में वर्षा की स्थिति की समीक्षा की। श्री चौहान जल्द ही पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर संकटग्रस्त किसानों से मिलकर हर संभव सहायता सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार की मसौदा मतदाता सूची पर दावे, आपत्तियां और सुधार आज के बाद भी दायर किए जा सकते हैं। मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के बाद ही उन पर विचार किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सुनवाई के दौरान आयोग ने यह दलील दी। न्यायालय ने ऐसे दावे दायर करने की समय सीमा आज से आगे बढ़ाने का कोई निर्देश नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज निर्वाचन आयोग पर बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने श्री गांधी पर वोट चोरी के बारे में हलफनामे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि श्री गांधी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं और बेबुनियाद आरोप उनकी आदत है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI ने इस वर्ष अगस्त में पहली बार 20 अरब से अधिक लेनदेन का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह पिछले वर्ष अगस्त में 14 अरब 90 करोड़ से 34% अधिक है। इस दौरान 24,85,000 करोड़ रुपए का आदान प्रदान किया गया। इसमें 24% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। अगस्त में औसत दैनिक लेनदेन की संख्या 64,50,00,000 तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप में हुई लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।